आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बस्तर पांडुम की प्रशंसा की, कहा अब हिंसा नहीं विकास है बस्तर की नई पहचान। प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब अविवाहित और तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगी पेंशन। गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की बजट प्रस्तावों की समीक्षा। 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बजट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आयोजित बस्तर पांडुम उत्सव ने बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और आदिवासी विरासत को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पहले जब बस्तर का नाम लिया जाता था तो माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज बस्तर विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए पेंशन नियम 2026 मंजूर किए हैं, जिसमें परिवार पेंशन के दायरे में अब अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी शामिल किया गया है।
अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। तो तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है कि जो लड़कियां माता पिता पर आश्रित रहती है और जब तलाक हो जाए तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है, तो मध्य प्रदेश में उसको भी पेंशन की पात्रता रहेगी।
श्री कश्यप ने बताया कि कैबिनेट ने जनजातीय कल्याण और महिला बाल विकास की योजनाओं को अगले 5 वर्षों के लिए विस्तार देते हुए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। इसके साथ ही धरती आबा अभियान के तहत 63,000 से अधिक की राशि मंजूर की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए कई पहल शुरू की है। श्री शाह ने कहा है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।
गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, CBI, NIA, ED, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क या राज्य विशिष्ट समूह की मौजूदगी का पता लगाने को कहा है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने कहा कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई समानता है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने को कहा है। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि बचाए गए बच्चों से पूछा जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। न्यायालय एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कई राज्यों में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या को उजागर किया गया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी खर्च में कमी आई है और कर संग्रह स्थिर रहा है। उन्होंने कहा कि बजट में कॉरपोरेट जगत की तुलना में व्यक्तिगत करदाताओं पर कर का अधिक बोझ डाला गया है। भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा कि बजट सरकार की प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास और निरंतरता को दर्शाता है। उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकार की सराहना की। भाजपा सांसद ने कहा कि भारत ने बदलते वैश्विक परिदृश्य में समझदारी से आगे बढ़ने की अपनी क्षमताओं को दर्शाया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस बजट को दिशाहीन बताया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को 1,90,000 करोड़ रूपये की बकाया राशि नहीं मिलने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट में सभी क्षेत्रों और वर्गों के कल्याण का विशेष ध्यान रखा गया है। ये बजट 18 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा दिए गए बजट प्रेजेंटेशन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की आर्थिक प्रगति का नया आधार बताया। सरकार का लक्ष्य है कि बजट के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा किए जाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की आज नई दिल्ली में हुई मुलाकात कृषि के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश को देश की कृषि का पावर हाउस बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय उत्पादन में राज्य का 10% योगदान है।
एग्रीकल्चर में अकेले आंध्र का योगदान लगभग 10% है और उनके विजनरी लीडरशिप में हॉर्टिकल्चर का हब एपी बन रहा है। कैजू, कोको, काफी, कोकोनट, अभी नए बजट में जो अनाउंस की गई है विशेष योजनाएं, उन पर तेजी से आंध्र प्रदेश काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि बनाने में उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सफल होगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायडू को बधाई दी कि उनका राज्य बागवानी के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है। बैठक में तय हुआ है कि केंद्र की एक विशेषज्ञ टीम सीधे आंध्र सरकार के साथ मिलकर किसानों की आय दोगुनी करने और नए बजट की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए काम करेगी। एशियाई राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में आकृति दहिया ने रजत पदक जीत लिया है। कजाकिस्तान की सोफिया सुलजेको ने स्वर्ण, जबकि अंजुम मौदगिल ने कांस्य पदक जीता। आकृति दहिया, अंजुम मौदगिल और आशीष चौकसे की भारतीय जोड़ी ने टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। कजाकिस्तान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 15 फरवरी को ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान और ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए खंडवा इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते श्रद्धालु दुर्गम मार्गों से चौरागढ़ मंदिर शिखर तक पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। मंदसौर में मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद पंचायत परिसर में आज विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अशोकनगर में आज आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं को सुनकर निराकरण के निर्देश मौके पर उपस्थित जिला अधिकारियों को दिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर बैतूल जिले के रानीपुर स्थित प्राचीन छोटा महादेव मंदिर में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बैतूल कलेक्टर ने आज मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम की थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में आज बैंक ऑफ इंडिया से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। शिवपुरी जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। जिले के 64 परीक्षा केंद्रों पर कुल 15,455 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं देवास में भी जिले में कक्षा 12वीं के करीब 20,000 छात्रों के लिए 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।